بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين پروردگار عالم آپ تمام دوستان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام بزرگان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو معاد کے بارے میں تھی اور چند مقدماتی باتیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی اور انشاءاللہ آج چند اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ معاد کے بارے میں ہم کون سی بحث کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طریقے سے بحث کریں گے. سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ ان دروس کے لیے تھوڑا سا حوصلہ چاہیے اور جلدی میں دل برداشتہ نہیں ہونا, کیونکہ یہ اہم بحث ہیں اور ان مباحث کے لیے بہت سارے مقدمات کی ضرورت پڑتی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے سادہ سے سادہ زبان میں ان مباحث کو پیش کریں, لیکن بہرحال کیونکہ یہ مباحث تحلیلی ہیں, یہ مباحث عقلی مباحث ہیں اور روایات کے اندر ایک جو عرفی اور عام طور پر تعمل کیا جاتا ہے اس ابتدائی تعمل سے ذرا اوپر والا درجہ ہے, تو آپ جلدی میں دل برداشتہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے. کچھ تحمل سے مباحث کو انشاءاللہ دیکھیں گے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ لطف آئے گا کہ کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں. بہرحال معاد کے بارے میں میں نے جیسے کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ معاد اور آخرت یہ خود انسان کا اپنا مسئلہ ہے, یعنی یہ بحث ایسے نہیں ہے کہ جو فقط اور فقط چند مفروضوں پر قائم ہو, جیسے کہ ہم لوگ دوسرے علوم میں سائنسی تجربوں کے اندر بہت سارے مفروضے بناتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں, پھر ان مفروضوں کے تحت بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں, پھر ان کے مطابق تجربات اور پریکٹیکل کی شکل میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. تو یہاں پر مسئلہ جو معاد کے بارے میں ہے وہ مسئلہ صرف مفروضہ نہیں ہے یا کسی اور چیز کے بارے میں ہم کوئی تجربہ نہیں کر رہے, بلکہ یہ معاد کا مسئلہ, آخرت کا مسئلہ, مرنے کے بعد والے عالم کا مسئلہ, یہ در حقیقت میرا اپنا مسئلہ ہے, یہ خود میری اپنی بات ہے. یا کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خود میرے اپنے حقیقی مستقبل اور فیوچر کی بات ہے, لہذا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ میرا مسئلہ ہے, خود میری ذات کے ساتھ وابستہ مسئلہ ہے, میری ابدیت کا مسئلہ ہے, میری حیات حقیقی کا مسئلہ ہے, خود میرے حقیقی مستقبل کا مسئلہ ہے کہ میرے بارے میں کیا ہونا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کس جگہ پر پہنچنا ہے. لہذا بہت ہی اہم ہے اس بحث کے بارے میں توجہ کرنا. دوسرا نقطہ جو ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر اشارہ کروں وہ مسئلہ یہ ہے کہ معاد کے بارے میں ہمارا جو ابتدائی اور سطحی تفکر ہے ہم اس طریقے سے سمجھتے ہیں, جو عام طور پر تأثر ہے کہ ایک دن آئے گا, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और इसी जगह पर हशर बपा होगा, जितने भी मुर्दे कब्रों में दफनाए गए हैं उनको फिर उठाया जाएगा, और एक तरफ जन्नत है, दूसरी तरफ जहन्नुम है, अहले महशर मौजूद हैं, हिसाब व किताब हो रहा है, कजावत हो रही है, फैसला हो रहा है। फिर उसी कजावत के नतीजे में कुछ लोगों को बागात में भेजा जाता है और कुछ लोगों को जहन्नुम नामी आग के एक बहुत बड़े घड़े में फेंक दिया जाता है। आमतौर पर जो इब्तदाई तअस्सुर है हमारा माद के बारे में, आखरत के बारे में, वो ये तअस्सुर है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे समझते हैं कि एक दुनिया का ये निज़ाम है जो इस तरीके से चल रहा है, बिलाखर ये दुनिया का निज़ाम ख़त्म होगा और यहाँ पर फैसला होगा आखिरी, और उस फैसले के नतीजे में कुछ लोग कामयाब होंगे, बागात में चले जाएंगे, और कुछ लोग आग में जलते रहेंगे, आग में झोंक दिए जाएंगे। आया वाकई इस तरीके से मुआद, आया इस तरीके से आखरत है जिस तरीके से हम इब्तदाई तौर पर तसव्वुर करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस दुनियावी निज़ाम को लपेट दिया जाएगा। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जन्नत भी है, जहन्नुम भी है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि कामयाब और सआदतमंद इंसानों को जन्नत में भेज दिया जाएगा। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो नाकाम है, नामुराद हैं, जिन्होंने अपने आप को ख़राब किया, उन लोगों को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि कुरान मजीद के जब बयानात की तरफ हम आते हैं तो कुरान इस माद और आखिरत का गहरा तसव्वुर देता है। इस तरीके से नहीं है जैसे हम लोग इब्तदाई और सतही तरीके से समझते हैं। थोड़ा सा बात को वाज़े करने के लिए और आपको फ़ज़ा में लाने के लिए मैं सिर्फ एक आध बात आपसे पूछता हूँ कि इंशाल्लाह ये मबाइस आएंगे। देखें, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, जो रिवायात मेराजिया हैं हमारे पास, उन रिवायात मेराजिया से पता चलता है कि पैगंबर अकरम ने जन्नत को भी देखा, पैगंबर अकरम ने जहन्नुम को भी देखा, पैगंबर अकरम ने देखा कि जन्नतियों को जन्नत में ले जाया जा रहा है, जहन्नमियों को जहन्नुम में डाला जा रहा है, और हत्ता जन्नत जहन्नुम, जन्नती जहन्नुमी, इन सब लोगों को देखा। ये रिवायात मेराजिया में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिवायात हैं, कोई एक आध रिवायत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिवायात है। सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि अगर वाकयन आखिरत का, माज का, जन्नत और जहन्नुम का वही आम और सती इब्तदाई तसव्वुर होता तो दुनिया तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, महशर तो अभी तक बपा नहीं हुआ। खूब, जब दुनिया अभी तक ख़त्म नहीं हुई, महशर अभी तक बपा नहीं हुआ, तो पैगंबर अकरम ने कौन सी जन्नत देखी, पैगंबर अकरम ने कौन सी जहन्नुम देखी, वो कौन से जन्नती थे जो जन्नत में जा रहे थे, वो कौन से जहन्नुमी थे जो जहन्नुम में जा रहे थे, वो कौन से लोग थे जिनका हिसाब व किताब हो रहा था। खूब, ये चीज़ें तो अभी तक हुई नहीं है, तो पैगंबर अकरम ने ये किस तरीके से देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को कैसे देखा, जन्नतियों को कैसे देखा, जहन्नुम को कैसे देखा, जहन्नुमियों को कैसे देखा, उनका हिसाब व किताब होते हुए किस तरीके से मुलाहजा किया, किस तरीके से देखा। अगर इस सती और इब्तदाई किस्म के तसव्वुर को मान लिया जाए तो इन चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे, ये कोई किसी फलसफी की बात या किसी आरिफ की बात तो नहीं है ना, ये तो रिवायात अहल बैत के अंदर बिल्कुल वाज़े और रोशन तरीके से मतालब आए हैं। रिवायात मेराजिया इस मज़मून के साथ भरी हुई हैं। खूब, इन रिवायात मेराजिया को क्या करेंगे। यहाँ से पता चलता है कि बस ये जो हम सतही तरीके से जन्नत और जहन्नुम और आखिरत का तसव्वुर लेकर आते हैं, ये सतही तसव्वुर हमारा दुरुस्त नहीं है। असल तसव्वुर दुरुस्त है लेकिन ये सतही तसव्वुर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद की वाज़ेह सरीह नुसूस हमारे पास मौजूद हैं जो आखिरत का कुछ और तसव्वुर देती है, कि इंशाल्लाह उनके बारे में गुफ्तगू होगी। मैं सिर्फ अभी यहाँ पर इशारा कर रहा हूँ। कुरान मजीद को उठाकर देखें, कुरान मजीद जो आखिरत के बारे में, माद के बारे में, कयामत के बारे में तसव्वुर देता है, वो तसव्वुर ये है कि इंसान खुदा की तरफ पलट के जाएगा। इंसान जहाँ से आया है उसी तरफ इंसान को पलट के जाना है, कि जो हमारे लफ्ज़ माद भी है। माद यानी पलटना। इंसान जो खुदा की जानिब से आया है, खुदा की जानिब पलट के जाएगा। ये चीज़ है कि जो कुरान मजीद की सरीह नुसूस से समझ में आती है, वाज़े आयात हैं, कि कुछ आयात की तरफ मैं इशारा भी करता हूँ। लेकिन हम लोग जो सादा सा तसव्वुर देते हैं, सतही तसव्वुर देते हैं, यहाँ तक कलामी किताबों में भी वो तसव्वुर हमारे सामने आता है, उस तसव्वुर में ये दिया जाता है माद यानी रूह का अपने बदन की तरफ पलटना। हत्ता बाज़ मुतकल्लिमीन ने इस चीज़ की सराहत भी की है, जो कलामी किताबों में जिन लोगों ने लफ्ज़ माद को इस्तेमाल किया है, वो लोग ये कहते हैं कि माद यानी रूह का बदन की तरफ पलटना। हालांकि कुरान मजीद से जो चीज़ समझ में आ रही है, और फलसफी तबयीनात जो मुल्ला सदरा फिर इन आयात और रिवायात के बारे में भी करते हैं, उन तमाम से ये चीज़ समझ में आती है कि माद इंसान के रूह का बदन की तरफ पलटना नहीं है, बल्कि इंसान की हकीकत का खुदा की जानिब पलटना है। अलबत्ता मेरी इस बात का मकसद ये नहीं है कि माद जिस्मानी नहीं है, कि इंशाल्लाह इसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। माद जिस्मानी है, इसका हम इनकार नहीं करते, लेकिन माद जिस्मानी है, लेकिन कौन सा जिस्म? महाद बदन के साथ भी है, लेकिन कौन सा बदन? ये अपनी जगह पर है, खुद इसके बारे में गुफ्तगू होगी। बदन इंसान किसे कहते हैं? इंसान की हकीकत क्या है? इंसान का रूह क्या है? इंसान का नफ्स क्या है? इंसान का जिस्म क्या है? इंसान का बदन क्या है? इस दुनिया में कौन सा बदन है? इस दुनिया में कौन सा जिस्म है? फिर आखिरत में इंसान के पास कौन सा बदन होगा? कौन सा जिस्म होगा? किस तरीके से होगा? ये सारी गुफ्तगू है, जो इंशाल्लाह हम आइंदा मबाइस में आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं गुफ्तगू ये करना चाह रहा हूँ कि हमारा आम मुतकल्लिम जो आम सतही तौर पर माना करता है, वो माद का ये माना करता है, माद यानी रूह का बदन की तरफ पलटना। लेकिन हकीकत यह है कि कुरान मजीद की सरीह नुसूस को जो हम देखते हैं, उन सरीह नुसूस से पता चलता है कि माद एक आलम है। माद एक ऐसा नशा है, एक ऐसा आलम है, कि जिस आलम में इंसान खुदा की तरफ पलटता है, खुद खुदा की तरफ जाता है, मुलाकात परवरदिगार आलम की तरफ जाता है। कि इंशाल्लाह इसकी वजाहत आएगी, इसकी वजाहत है कि आखिरी तरीन हमारी बात यही होगी कि खुदा की तरफ पलटना यानी क्या। लेकिन मैं आपके इत्मीनान के लिए चंद कुरान मजीद की आयात और चंद कुरान मजीद के बयानात पेश करता हूँ, ताकि आप भी बिल्कुल मुतमैन हो जाए। पहला पहला बयान वही सूरह बकरा की 156 नंबर आयत, जो आप अक्सर पढ़ते भी रहते हैं, इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि यहाँ पर मेरा जो शायद मिसाल है वो है, व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम खुदा के लिए हैं और खुद खुदा की तरफ पलट के जाएंगे। इस आयत में बिल्कुल सरीह और वाजे तरीके से व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम लोगों को खुदा की जानिब पलट, माद और आखिरत यानी खुदा की जानिब पलटना। ये सूरह बकरा की 156 नंबर आयत जो आम तौर पर आप पढ़ते रहते हैं। या मसलन सूरह अनकबूत की आयत है 57, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत थुम्मा इलैना तुरजऊन। हर नफ्स मौत का जायका चखता है। इंशाल्लाह मौत, सकरात, इन चीज़ों के बारे में हमारी गुफ्तगू होगी। फिलहाल मैं अभी उस मकाम में नहीं हूँ, उसके बारे में हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि मौत फौत का नाम नहीं है, मौत ख़त्म होने का नाम नहीं है। कि कुरान की ये जो आयत है, ये भी बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान कर रही है कि हर नफ्स मौत को चखता है। ये इंसान है जो मौत और मर्ग को चखता है, न कि मौत और मर्ग इंसान को चखते हैं। जाइक इंसान है, चखने वाला इंसान है, लिहाजा मौत को फौत कहना बिल्कुल गलत है। बरात कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान हर नफ्स मौत को चखने वाला है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, उसके बाद तुमको हमारी तरफ पलटाया जाएगा। देखें यहां पर भी ये है कि इंसान जो मरता है मरने के बाद सुम्मा इलैना तुरजऊन, उसको हमारी जानिब पलटाया जाता है। ये भी नस्से कुरान है और सरीह मौजूद है। या इसके अलावा सूरह रूम की 11 नंबर आयत, कि इस आयत के अंदर देखे अल्लाहु यब्दउल खल्क सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन, कि नहायत खूबसूरत आयत है सूरह रूम की आयत नंबर 11, कि अल्लाहु यब्दउल खल्क, अल्लाह और खुदा वो है कि जिसने खिलकत का आगाज किया, सुम्मा युईदुहु उसके बाद इस खिलकत को पलटाता है, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसी अल्लाह की जानिब तुमको पलटाया जाएगा। बस आप देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि यहां पर एक कौस आप फर्ज करें, कौस एक दायरे की शक्ल में अगर आप शक्ल को मद्देनजर रखें, ऐसे लग रहा है कि एक नुक्ते से एक दायरा चल रहा है जो बिल्कुल नीचे आता है, और फिर उस नीचे आने के बाद आप देखते हैं दायरे में अगर उसी खत और लकीर को लेकर जाएं तो पलट कर आप उसी नुक्ते की तरफ चले जाते हैं। ये दायरे वाली शक्ल आप मद्देनजर रखें, ये जो दायरा है, दायरा बनाया जाता है, आप दायरे में ऊपर वाले एक नुक्ते पर उंगली रखें, ठीक है, और उसके बाद वो जो दायरे की लकीर है उसके साथ बिल्कुल आप नीचे आए, उस लकीर से जैसे ही हाथ लगाते हुए आप आएंगे 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 बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, फिर उसी लकीर पर अगर आप चलते रहें तो फिर दूसरी जानिब से वो लकीर पलटती है पलटती है पलटती है उसी नुक्ते तक पहुंचती है। तो कअन्नहू यहां पर भी इसी तरीके से जब दायरे के एक नुक्ते पर आपने हाथ रखा है और उसी लकीर पर बिल्कुल उंगली चलाते हैं, ये जो आप बिल्कुल नीचे आ रहे हैं ये दायरे का एक हिस्सा है, कि जिसको अरबी जबान में हम कहते हैं कौस। कौस दायरे को अगर दो टुकड़ों में आप तकसीम करेंगे तो इसके दो कौस बनेंगे ना, ये जो कमान होती है ये इस दायरे का एक टुकड़ा होता है। एक आप दायरे की शक्ल में एक चीज को फर्ज करें, अगर उसको दरमियान से काट दें, उसको दो टुकड़े बनाएं, तो उसके दो कौस बनते हैं। दो टुकड़े जो बनते हैं इनको कहा जाता है दो कौस, कमान का एक हिस्सा और कमान का दूसरा हिस्सा। ये दर हकीकत अगर दो कमानों को आप बिल्कुल आपस में जोड़कर मिलाएं इस तरीके से करें तो वो एक दायरे की शक्ल में बन जाएगी। तो कमान एक कौस होता है, एक कौस है, और दूसरा कमान का जो हिस्सा है दूसरी कमान, वो दूसरा टुकड़ा और दूसरा हिस्सा है। तो यहां पर खिलकत के बारे में जो कुरान मजीद की इस आयत पर अगर आप गौर कर रहे हैं तो आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि ये कायनात दर हकीकत दो कौस हैं। एक कौस ऐसा है कि जिस कौस के एतबार से अल्लाहु यब्दउल खल्क, परवरदिगार आलम इस खिलकत का आगाज करता है, परवरदिगार आलम इस कायनात को खल्क करता है, कि ये कौस का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, कि वो जैसे ही आप उस ऊपर वाले दायरे के नुक्ते से उस लकीर पर हाथ लगाते हुए आ रहे हैं तो बिल्कुल नीचे पहुंच जाएंगे। कन्नौ ये एक कमान बन गई, एक कौस बन गया, एक हिस्सा बन गया, कि जिसको अहले मारिफत कहते हैं कौसे नुजूल, अल्लाहु यब्दउल खल्क। फिर उसी लकीर पर आप उंगली रखते जाएं, बिल्कुल उंगली रखते जाएं उसी नुक्ते तक जाकर पहुंचे जिस नुक्ते से आपका आगाज हुआ था, सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन, ये दूसरे वाला टुकड़ा। फिर खुदावंद मुताल ये जो इस कौस को नीचे लेकर आया इसी को फिर ऊपर लेकर आता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस ये हकीकत में ये मिसाल फकत समझाने के लिए है ताकि इन आयात का मफहूम किसी हद तक हमारे जहन में आए। और इंशाल्लाह इसके बारे में मैं गुफ्तगू करूँगा, इसके बारे में मुफस्सल गुफ्तगू है, और इंशाल्लाह हम माद के बारे में यही बयान करेंगे कि दर हकीकत खिलकत कौस से नुजूल है, नीचे आना है, और माद इसी कौस का फिर ऊपर पलटना है। ये एक कौस नीचे लाने वाला है कि जिससे खिलकत का आगाज होता है, अल्लाहु यब्दउल खल्क, और माद कौसे नुजूल है, वही लकीर है, दूसरा कौस है कि जिसके जरिए से आप ऊपर फिर खुदा की तरफ पलट कर जाते हैं। अलबत्ता इसके बारे में गुफ्तगू है कि खुदा की तरफ पलट कर जाते हैं यानी क्या, ये इसके बारे में गुफ्तगू है, इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, मतालिब को बयान करेंगे कि क्या मुराद है। लेकिन हद अकल इन आयात से इतना पता चल रहा है कि एक कौसे नुजूल है, अल्लाहु यब्दउल खल्क, खिलकत का आगाज करता है, खुदावंद मुताला नीचे लेकर आता है, इन मखलूकात को बिल्कुल पैदा करता है, तो उस कौस नुजूल की तरह ये आहिस्ता आहिस्ता लकीर नीचे आती है, नीचे आती है, जब बिल्कुल अपने इंतहा तक पहुंचती है तो फिर यही लकीर दायरे में पलट कर फिर ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, उसी जगह पर जाकर पहुंचते जिस जगह से इसका आगाज हुआ था। ये जो लकीर पलट कर ऊपर जाती है इसको हम कहते हैं कौसे सुऊद, ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना, यहां तक कि उस नुक्ते तक पहुंच जाए जिस नुक्ते से ये आया था। तो खिलकत और कायनात में बिल्कुल इसी तरीके से एक कौसे नुजूल है और एक कौसे सुऊद है। तो मैं चंद आयात को पढ़ता हूं, फिर इसके बारे में थोड़ी सी और भी तौजीह दूंगा। ये हो गई आय सूरह रूम, या मसलन इसके अलावा सूरह शूरा को मद्देनजर रखें, 53 नंबर आयत, अला इलल्लाह तसीरुल उमूर फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। सूरह शूरा आयत नंबर 53, अला खबरदार हो जाओ, इलल्लाह तसीरुल उमूर साद के साथ, कि खुदा की तरफ उमूर पलट रहे हैं, कि इस सेरूरत के बारे में मैं गुफ्तगू करूंगा लेकिन अभी नहीं, बाद में। इस आयत से इतना पता चला कि सारे उमूर खुदा की तरफ पलट रहे हैं। फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन, बाबरकत है, पाक है, मुनज्जह है वो जात के जिसके हाथ में, जिसके कब्जे कुदरत में हर शय के मलकूत है। बहुत लतीफ है ये कुरानी तसव्वुर, बहुत लतीफ है। हम लोग ये तसव्वुर करते हैं कि एक मर्तबा अचानक हमें इस दुनिया में फेंक दिया गया ना, अजीज मन इस तरीके से नहीं है, कुरानी तसव्वुर ये नहीं है। इंसान अचानक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, इंसान बहुत सारे अवालिम को तय करता हुआ आया है, बहुत सारे अवालिम को गुजारते 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 इस दुनिया में पहुंचा है। बस इस दुनिया में पहले भी इंसान ने बहुत सारे अवालिम गुजारे हैं कि जिनको कुरान मजीद की आयात में और रवायात में बड़ी तोजी के साथ आलम जर के उन्वान से, दूसरे अनावीन से बयान किया गया है, या मलकूत की ताबीर की हर चीज के मलकूत हैं, या एक और जगह पर कुरान मजीद में कि हर चीज के खजाने हैं, इन मिन शैइन इल्ला व इंदना खजाइनहू, कोई चीज नहीं है मगर ये कि उसके खजाइन है, उसके खजाने हैं। बस उन खजाइन से इंसान यहां पर पहुंचा है, या वो जो बंदे हकीर की बात अभी थोड़ी देर में पहले आपके लिए अर्ज कर रहा था कि कौस नुजूल के एतबार से परवरदिगार आलम से जो खिलकत का आगाज हुआ, ये जो इंसान चला है इन तमाम अवालिम को तय करते तय करते तय करते तय करते इस दुनिया तक पहुंचा। जब इस दुनिया तक पहुंचा है तो यहां पर इसका सफर खत्म नहीं होता, बल्कि ये इंसान फिर यहां से भी सफर कर रहा है, पलट रहा है, पलट रहा है, पलट रहा है, जिस तरीके से अवालिम को तय करके दुनिया में पहुंचा था इसी तरीके से फिर उसने अवालिम को तय करना है और पलटना है, खुदा की जानिब पहुंचना है। खूब, यह है महाद का तसव्वुर, यह है आखरत का तसव्वुर। फसुबहान अल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन, फिर देखे इसी आयत में आखिरी जुमला क्या है, व इलैहि तुरजऊन, और तुम लोगों को खुदा की जानिब पलटाया जाएगा। तो माद दर हकीकत खुदा की जानिब पलटना है। जैसे इंसान मुख्तलिफ अवालिम को तय करके इस आलम दुनिया तक पहुंचा है, इसी तरीके से इंसान को फिर अवालिम तय करके खुदा की बारगाह तक पहुंचना है। बस ये माद दर हकीकत अवालिम के अंदर सैर है, मुख्तलिफ आलमों के अंदर सैर है। ये अवालिम और आलमों के अंदर मुख्तलिफ नशात के अंदर इंसान का सैर, जो सैर सऊदी है, इसको हम माद कहते हैं। ये माद का इब्तदाई तसव्वुर बिल्कुल गलत है कि हम माद को एक अमूद जमान में फर्ज करें। आप एक लकीर खींचते हैं ना, एक मरतबा एक अमूदी लकीर होती है, खत होती है, अमूदी लकीर यानी बिल्कुल सीधी, आप इस तरीके से जो लकीर निकालते हैं इसको हम कहते हैं खत अमूदी। ये जो उमूदी खत आप निकालते हैं एक ये है, और एक मरतबा आप एक खत उफुकी निकालते हैं। उफुकी खत यानी जो इस तरीके से ऊपर जाती है। एक ट्रायंगल को आप फर्ज करें, आप ट्रायंगल जब बनाते हैं तो वहां पर आपके पास तीन लकीरें हैं, एक बिल्कुल सीधी लकीर, फिर वहां पर एक ऊपर की जानब अलबत्ता थोड़ी मुनहनी होती है, टेढ़ी खत होती है, ये जो ट्रायंगल आप बनाते हैं मुसलस, और दूसरी भी इसी तरीके से। तो वो जो उफुकी खत है, हम लोग ऐसे समझते हैं कि माद कयामत आखिरत इस जमान के अंदर एक अमूदी खत है, कि ये जमान इस तरीके से एक खत मुस्तकीम की तरह चल रहा है, चल रही है, ये दुनिया चल रही है, एक जगह पर आकर ये जमान खत्म हो जाएगा और इसी जगह पर आकर आखिरत बपा हो जाएगी, कयामत बपा हो जाएगी। हम लोग इसी तरीके से तसव्वुर करते हैं, हालांकि कुरान मजीद से जो हमें माद के बारे में, आखरत के बारे में तसव्वुर मिल रहा है वो इस तरीके से नहीं है कि ये एक खत अमूदी नहीं है, बल्कि ये एक सैर सऊदी है। अगर दूसरे अल्फाज में मैं कहूं तो ये यहां पर एक खत उफुकी है, ऊपर की तरफ इंसान जा रहा है, लेकिन अच्छी ताबीर वो कौस सऊद वाली है, कौस सऊद वाली है, खत वाली ताबीर इतनी मुनासिब नहीं है। कौस है दायरे में, एक कौस के जरिए से आप नीचे आए जिसको हम कौस नुज़ूली कह रहे हैं, और एक कौस के जरिए से आपको ऊपर जाना है जिसको हम कौस सऊदी के साथ ताबीर कर रहे हैं। तो ये माद अवालिम में सैर है, न कि इसी दुनिया के अंदर इस दुनिया को मिटाकर इस दुनिया की जगह पर एक मॉडर्न दुनिया बनानी है। मॉडर्न दुनिया बनाने का नाम आखिरत नहीं है कि इस दुनिया को मिटाकर इसकी जगह पर एक जगह पर बागात को बना दिया, दूसरी जगह पर हमने जहन्नुम के बहुत बड़े घड़े बना दिए, गड्ढे बना दिए, ना इस तरीके से नहीं है माद कुरान की नजर में। ये वही दुनिया है, ये जो हम लोग आम तौर पर तसव्वुर करते हैं कि इस दुनिया को मिटाकर एक चटेल मैदान बना दिया जाएगा, और इस चटेल मैदान पर एक तरफ बागात होंगे और एक तरफ जो है वो क्या है, जहन्नुम के बहुत बड़े गड्ढे होंगे, बहुत बड़े घड़े होंगे, कि जहां पर जो है वो क्या है, एक खाई बना दी गई है कि जहां पर आग जल रही है, पकड़ कर बाज लोगों को उस खाई में फेंक दिया जाएगा और बाज लोगों को उस जन्नत के बागात में भेज दिया जाएगा। यानी एक इस तरीके की मॉडर्न किस्म की दुनिया हम तसव्वुर करते हैं। कुरान माद के बारे में ऐसे नहीं कहता, कुरान के नुक्ते निगाह के एतबार से माद ये नहीं है कि इसी जगह पर वो जो रूह इंसान आलम बरजख में चला गया था, फिर उसको पलटा कर इसी दुनिया में, मसलन इस मादी दुनिया और उनसुली दुनिया में वापस लाया जाए, ना ना अजीज मान, इस तरीके से नहीं है। आखिरत का तसव्वुर कुरान ये नहीं दे रहा, ये सरी आयात मौजूद है कि इन आयात में ये कहा जाता है कि इंसान का आगाज जो परवरदिगार आलम से हुआ था, आखिरत यानी फिर उसी की तरफ पलट कर जाना है। अला इल्लल्लाह तसीरुल उमूर फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन, और उसी खुदा की जानिब तुमको पलटाया जाएगा। या सूरह हूद की 123 नंबर आयत, व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लु, उसी खुदा की जानिब सारे के सारे अम्र को, सारे के सारे कामों को, उमूर को उसी की जानिब पलटाया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहें तो सूरह अनकबूत की आयत नंबर 21 में है, युअज्जिबु मन यशा व यरहमु मन यशा व इलैहि तुक्लबून, कि इंशाअल्लाह खुदा ने मुताल ने तौफीक दी। तो आइंदा जब हम गुफ्तगू करेंगे कुरान का, ये एक एक लफ्ज, एक एक मादा जो रूट वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इसमें बहुत सारी खसूसियात पोशीदा है, मैं अभी उनमें से किसी के बारे में गुफ्तगू नहीं कर रहा। यहां पर जो लफ्ज आ रहा है वह इलैये तुक्लबून, तो मैं उसी खुदा की तरफ कल्ब किया जाया, कल्ब किया जाएगा, पलटाया जाएगा। फिलहाल तर्जुमा यही कर रहा हूं कि देखें यहां पर भी महाद का तसव्वुर यही आया कि युअज्जिबु मन यशा व यरहमु मन यशा व इलैहि तुक्लबून, उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। या इस तरीके से सूरह मायदा की आयत नंबर 18, वलिल्लाहि मुल्कुस समावात वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर, फकत अल्लाह के लिए आसमानों और जमीन की बादशाही, व इलल्लाहिल मसीर बाजगश्त पलटना, फकत और फकत अल्लाह की तरह है। ये माद का तसव्वुर है। या मसलन इसी तरीके से सूरह मोमिनून की आयत नंबर 79, वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़, खुदा वो है कि जिसने तुम्हें जमीन में उगाया। ये मेरे लिए बहुत ही अहम लफ्ज है कि इसके बारे में इंशाल्लाह बाद में गुफ्तगू हम करेंगे कि जमीन से उगता है इंसान। वइलैहि तुहशरून, और तुम लोगों को खुदा की जानिब ही महशूर किया जाएगा। या इसी तरीके से सूरह मरियम की 40 नंबर आयत, इन्ना नहनु नरिसुल अर्द व मन अलैहा, बेतहकीक हम जमीन के वारिस होंगे, जमीन हमारे इर्स में आएगी। खुद ये इर्स लेगा खुदा यानी क्या, के खुद दिए ये सारे नुकात हैं अपनी जगह पर कि फेलन मकसूद नहीं है। वह इलैना युरजऊन, और तुम लोगों को सिर्फ हमारी जानिब पलटाया जाएगा। या इसी तरीके से सूरह यूनुस की आयत नंबर 34, कुलिल्लाहु यब्दउल खल्क थुम्मा युईदुहू फअन्ना तुफकून, ए हमारे हबीब तुम कह दो वही अल्लाह है जिसने खिलकत का आगाज किया फिर इसी खिलकत को अपनी तरफ पलटाएगा। फअन्ना तुफकून, बस कहाँ तुम लोग फेरे जा रहे हो, तुम लोगों को खुदा की जानिब ही पलटना है। या इसी तरीके से सूरह यूनुस की आयत नंबर 30, हुनालिक तबलू कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफत वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरू। अल्लाह अकबर। वही वो मरहला होगा, हुनालिका वही वो मरहला होगा, वही जगह है कि तबलू कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफत, इंसान आजमाएगा उस शय को जो उसने अपने लिए भेजी है। अगर दुनिया के अंदर हम लोग ये तसव्वुर करते हैं मुख्तलिफ जो काम करते हैं वो ख़त्म हो गए, ना ना, कुरान कहता है जो कुछ तुम काम कर रहे हो वो दर हकीकत अपने लिए दूसरे अवालिम में भेज रहे हो और तुमको वही वहां पर मिलने वाला है। वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, कि फेलन मेरा शायद ही मिसाल यही है कि तुम लोगों को अपने अल्लाह की जानिब के जो तुम्हारा मौला है उसी की जानिब तुम्हें पलटाया जाएगा। इस तरह की और बहुत सारी आयात हैं कि फिलहाल मैं उन तमाम आयात को पेश नहीं करा, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कुरान मजीद जो हमें माद का तसव्वुर दे रहा है वो हमारे इस सतही तसव्वुर से बढ़कर है। कुरान यही कह रहा है, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाए इलल अर्ज़ थुम्मा यअरुजु इलैह, फिर ये उसी की तरफ उरूज करता है, उसी की तरफ पलटता है। लिहाजा माद के बहस में जो सबसे ज्यादा अहम चीज है इस नुक्ते को समझना चाहिए कि माद अवालिम का सैर है, ये इंसान है जो मुख्तलिफ अवालिम का सैर करता है, ये इंसान है जो कौसे नुजूल के एतबार से नीचे उतरा है फिर इस इंसान को कौसे सुकूत के एतबार से इन अवालिम को तय करते तय करते फिर खुदावंद मुताल की जानब पलट कर जाना है। लिहाजा माद के बहस में ये आज मैंने सिर्फ आपके लिए एक इजमाली खाका बयान किया है कि कुरान की ये सरीह आयात हैं, इनके अंदर किसी कज बहसी की जरूरत नहीं है, इनके अंदर आकर कोई नहीं कह सकता कि मुराद ये है मुराद ये है, ना, क्योंकि ये इतनी आयात में ये मतलब आया है बिल्कुल सराहत और रोशन तरीके से कि जिसका इनकार इंसान नहीं कर सकता। ये कोई एक आध आयत नहीं है, मैंने आपके सामने इतनी आयत पढ़ी है और इसके अलावा भी और बहुत सारी आयत हैं जो इस मजमून को पहुंचाती है कि माद आखिरत खुदा की तरफ पलटने का नाम है। माद आखरत लिकाए इलाही का नाम है, खुदा से मुलाकात का नाम है, खुदा की जानिब पलटने का नाम है। ये किसी आरिफ की बात नहीं है, किसी सूफी की बात नहीं है, कुरान मजीद की बेपनाह और बेशुमार आयात का ये मजमून है। इस मजमून का कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। 2 मिनट के लिए अगर इसके बरखिलाफ कोई बात आपने सुनी है तो उन चीजों को अपने जहन से उठाकर बिल्कुल बाहर फेंक दे, क्योंकि ये कुरान की सरी आयात है। बहरहाल इस माद के बहस को और इस नुक्ते को कि बिलाखिर कैसे इंसान खुदा की तरफ पलटता है, वो अवालिम क्या है, किस तरीके के अवालिम है, इसलिए जरूरी है कि हम खुद खुद अपने आप को थोड़ा बहुत समझें, खुद अपने बारे में तामुल करें। ये बहस इंतहाई अहम है। जब तक मैं खुद अपने आप को नहीं समझता, मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इसीलिए जहां पर भी मुल्ला सदरा ने माद के बारे में गुफ्तगू की है, उससे पहले खुद इंसान शनासी के बारे में गुफ्तगू की है कि ये माद भी दर हकीकत इंसान शनासी है, इंसान खुद अपने आप को पहचानता है। लिहाजा 2 मिनट के लिए आप खुद अपने आप पर तआम्मुल करें, और हम इस माद के बहस के लिए जरूरी है कि खुद अपने आप के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करें। बिलाखिर ये हजरत इंसान है क्या, इस हजरत इंसान के कौन से सफर हैं, कहाँ पर ये जाता है। इंशाल्लाह कि आज तो वक्त निकल गया, कल से हम 2-3 जलसे इस नुक्ते के बारे में बयान करेंगे कि खुद इंसान क्या है, ये इंसान जो पलटकर खुदा की तरफ जा रहा है यानी क्या, ये समझना बिल्कुल अहम है और बहुत ज्यादा जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।